நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வ்யாஸம் ததோ ஜயமுதீரயே. தத்தாத்ரேய ஜி கா பிரசங் சலா தா. சுமதி நாம் கே புத்திர நே அப்னே பிதா கோ அப்னே 10,000 ஜன்மோ கி கதாயே பதாயி, கபி நரக மே கபி கஹா கபி கஹா. तो पिता ने कहा कि भाई तुझे तो बहुत ज्ञान है, मुझे इस बात का पता नहीं था, तुम ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो, तुमको ये ज्ञान किस प्रकार से मिला और मेरी भी मुक्ति करो. तब उनके पुत्र ने कहा कि एक दत्तात्रेय महाराज हुए थे, उन्होंने अलर्क नाम के राजा का उद्धार किया था, उसको योग का उपदेश दिया था. कि दत्तात्रेय जी किसके बेटा थे और उन्होंने अलर्क को कहां उपदेश दिया, योग का उपदेश कहां वो मिले, इस पूरी बात बताओ. तब बीच में एक बात आई, कौशिक नाम का ब्राह्मण बड़ा कोढ़ी, उसकी एक पतिव्रता पत्नी जिसके प्रभाव से सूर्य रुक गया था, इतना प्रभाव. फिर सारी सृष्टि में बड़ा विप्लव होने लगा, ऊहापोह होने लगी. तो अनुसुया जी के पास देवता लोग गए. अनुसुया जी ने पहले तो कहा, देवताओं तुम लोग मेरे पास क्यों आए, उस ब्राह्मणी के पास जाओ जिसके पातिव्रत्य के प्रभाव से सूर्य भी रुक गया. मांडव्य ऋषि ने कहा कि सुबह सूर्योदय होते ही मर जाएगा. पतिव्रता ने कहा कि सूर्योदय होगा तब न मरेगा, हम सूर्योदय होने ही नहीं देंगे. तो अनुसुईया जी ने कहा, उसके पास जाओ ना, उसने सूर्य को रोका और कहा कि वो इतनी पतिव्रता है, उसका तेज ऐसा है, उसके पास हम लोग जा नहीं सकते हैं. और ऐसी पतिव्रता आप हो, आप बड़ी बूढ़ी और बहुत ही समय आप देखे हुए हो, तो स्त्री की बात स्त्री, बड़ी बूढ़ी की बात स्त्रियों की बात चलती है, तो आप जाके कहो. तो अनुसुईया जी इसलिए गए कि एक पतिव्रता स्त्री के दर्शन करेंगे. उन्होंने जाकर के उस स्त्री से कहा कि सूर्योदय कर दो. ओ अनुसुईया जी, आपने कहा माता जी, सूर्योदय कर दिया. इधर वो मरा तो अनुसुईया जी ने जिला दिया, कोड वोड सब खत्म. बूढ़ा था वो, ये बुढ़ापा खत्म. बुढ़ापा को संस्कृत में वृद्धत्व बोलते हैं. मैंने कहा वृद्धत्व कहेंगे तो समझेंगे नहीं, बुढ़ापा शब्द एक साथ उपजा नहीं, बुढ़ापा इसका खत्म. सब एकदम सुंदर शरीर वाला हो गया. तो अब जो है, अनुसुईया के पास देवता वगैरह आएंगे, माता जी आपने तो बड़ा अच्छा किया, अब आप कोई हमको सेवा बताओ. तो अनुसुईया जी ने कहा कि एक ऐसा उपाय करो जिससे ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों को मैं बच्चा मान करके मैं इनके साथ में रहूं, ये मेरे बेटा हो और मैं इनकी मां बनूं, इनको दूध पिलाऊं, इनका पालन करूं. तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि माता जी हम आपके बेटा बनने के लिए तैयार। फिर उसके बाद सब चले गए, यहां तक की कथा तो हो गई। इसके बाद समय बीतता गया। ब्रह्मा जी के दूसरे नंबर के पुत्र थे महर्षि अत्रि, और उस अत्रि का विवाह अनुसुया के साथ हुआ। अनुसुया बड़ी सुंदर थी। यहां जितने भी देखो हमारे यहां ये पुराणों में आते ना, वो सुंदर थी, तो ये सुंदर का अर्थ क्योंकि इनके शरीर हमारे जैसे नहीं होते। ये ब्रह्मा जी की दिव्य सृष्टि है। ब्रह्मा जी की दो प्रकार की सृष्टि हुई, एक तो मनु और शत्रुपा से सृष्टि हुई इसलिए हम मानव कहलाते हैं, एक ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सृष्टि की। तो वो संकल्प की सृष्टि में ऐसे शरीर नहीं होते हैं, वहां दिव्य अच्छे शरीर अलौकिक। तो फिर ये सुंदर बोलना क्या है, यहां भाव की दृष्टि से कही जाती है बात। तो अत्रि ऋषि की अपनी जो तपस्या थी, तो उनकी तपस्या का जो स्वरूप था वो चंद्रमा ने ग्रहण किया और वो अनुसुया से उत्पन्न हुआ। ये समस्त प्राणियों का आधार है चंद्रमा। ऐसे ही भगवान विष्णु ने अपने श्री विग्रह से अनुसुया के सामने अत्रि का जो तेज था वो अनुसुया के सामने प्रकट किया, तो इससे भगवान विष्णु ही दत्तात्रेय बन गए। ये भगवान के द्वितीय पुत्र हुए। और तृतीय पुत्र कौन हुए, हय हय राज, हय हय एक वंश था, उसमें एक कृतवीर्य नाम का एक उद्दंड व्यक्ति था। उसने एक बार महर्षि अत्रि का अपमान किया, तो यह देख करके अत्रि का जो तीसरा बेटा था जो कि शंकर का ही स्वरूप था। देखो ब्रह्मा जी थे वो चंद्रमा बने, विष्णु भगवान थे वो दत्तात्रेय बने, और भगवान शंकर थे वो दुर्वासा बने। वो अभी दुर्वासा जी पेट में ही थे, तो अभी उनका जन्म होने में कुछ समय बाकी था। उनको क्रोध आ गया, पेट के अंदर क्रोध आया कि मेरे पिता का अपमान करता है कृतवीर्य नाम का। तो वो एकदम 7 दिन के अंदर बाहर आ गए और पिता के अपमान जनित दुख से क्रोधित होकर हयराज को तत्काल भस्म करने के लिए तैयार हो गए। वे तमोगुण के उत्कर्ष से भरे हुए थे, अर्थात उसमें तमोगुण बहुत ज्यादा था, इसलिए वे रुद्र के अंश कहलाए, शंकर के अंश कहलाए। इस प्रकार अनुसुया के गर्भ से ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों प्रकट हुए। चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से, दत्तात्रेय विष्णु भगवान के रूप में, और दुर्वासा साक्षात भगवान शंकर के अवतार के रूप में। तो भागवत में भी आता है, देवताओं के वरदान के कारण ये तीनों देवता वहां प्रकट हुए। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से तृण लता वल्ली अन्न और मनुष्यों का पोषण करने वाले हुए। सदा स्वर्ग में रहते हैं, वे प्रजापति के अंश हैं। दत्तात्रेय दुष्ट देत्यों का संहार करके प्रजा की रक्षा करते हैं, वे शिष्ट जनों पर बड़ी कृपा करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु का अंश जानना चाहिए। और दुर्वासा अपमान करने वालों को भस्म कर डालते हैं, वे शरीर दृष्टि मन और वाणी से भी उद्धत स्वभाव के, तेज स्वभाव के और रुद्र भाव का आश्रय लेकर रहते हैं। इस प्रकार प्रजापति महर्षि अत्रि ने स्वयं ही चंद्रमा को प्रकट किया। विष्णु रूप दत्तात्रेय जी योगस्थ होकर विषयों का अनुभव करने लगे और दुर्वासा अपने माता पिता को छोड़कर उन्मत्त नामक व्रत का आश्रय लेकर पृथ्वी पर घूमने लगे। कुछ काल बीतने के बाद जब राजा कृतवीर्य स्वर्ग को पधारे और मंत्रियों और पुरोहितों पुरवासियों ने राजकुमार अर्जुन को राज्याभिषेक के लिए बुलाया, अर्जुन माने सहस्रार्जुन, तब उसने कहा कि मंत्रियों, जो भविष्य में नरक को ले जाने वाला है वह राज्य मैं ग्रहण नहीं करूंगा। जिसके लिए प्रजाजनों से कर लिया जाता है उस उद्देश्य का पालन न किया जाए तो राज्य लेना व्यर्थ है। माने टैक्स तो ले ले वे प्रजा के हित के लिए और फिर उसको प्रजा के हित में नहीं लगाए तो फिर राजा होना ये बहुत क्लेश की बात है। वैश्य लोग अपने व्यापार से होने वाली आय का बारहवां भाग राजा को इसलिए देते हैं कि वे मार्ग में लुटेरों द्वारा लूटे न जाएं, राज के अर्थ रक्षकों के द्वारा वे सदा सुरक्षित रहें और वाणिज्य के लिए सदा यात्रा कर सकें। ग्वाले घी और तक्र आदि का तथा किसान अनाज का छठा भाग राजा को इसी उद्देश्य से अर्पण करते हैं कि वे प्रजा की रक्षा करें। यदि राजा वैश्यों से संपूर्ण आय का अधिकांश भाग ले ले तो वह राजा चोर का काम करता है, इससे उसके इष्ट और पूर्त कर्मों का नाश होता है। यदि राजा कर माने टैक्स देकर भी, यदि राजा को कर या टैक्स देकर के भी प्रजा को दूसरी वृत्तियों का आश्रय लेना पड़े तो उसकी रक्षा राजा के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों के द्वारा हो तो उस अवस्था में कर लेने वाले राजा को निश्चित नरक में जाना पड़ता है। हमने कमाया वो तो टैक्स में दे दिया, अब हमारी रक्षा हो नहीं पाई और हमको हमारी आजीविका के लिए और दूसरा काम करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में राजा को नरक भोगना पड़ता है। यदि चोरों से वह प्रजा की रक्षा न कर सका तो इसका पाप राजा को ही लगता है, इसलिए यदि मैं तपस्या करके अपनी इच्छा के अनुसार योगी का पद प्राप्त कर लूं तो मैं पृथ्वी के पालन की शक्ति से युक्त एकमात्र राजा हो सकता हूं। ये सहस्रार्जुन बोल रहा है। ऐसी दशा में अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह करने के कारण मुझे पाप नहीं लगेगा। सहस्रार्जुन के इस निश्चय को सुनकर के मंत्रियों के मध्य में बैठे हुए परम बुद्धिमान वयोवृद्ध मुनि श्रेष्ठ गर्गाचार्य ने कहा, राजकुमार, यदि तुम राज्य का यथावत पालन करने के लिए ऐसा ही चाहते हो तो मेरी बात सुनो और वैसा करो। कहो महाराज। इस समय महाभाग दत्तात्रेय सह्य पर्वत की गुफा में रह रहे हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है, तुम उनकी आराधना करो, वे त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। दत्तात्रेय जी योग युक्त परम सौभाग्यशाली सर्वत्र समदर्शी तथा विश्वपालक भगवान विष्णु के अंश के रूप में इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, उन्हीं की आराधना करके इंद्र ने दुरात्मा दैत्यों द्वारा छीने हुए अपने पद को प्राप्त किया था तथा दैत्यों को मार भगाया था, तुम जाकर उनकी शरण ले। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन माने सहस्रार्जुन, वो अर्जुन अलग है ये अलग है, देवताओं ने परम प्रतापी दत्तात्रेय की आराधना किस प्रकार की थी तथा दैत्यों द्वारा छीने हुए इंद्र पद को देवराज ने कैसे प्राप्त किया था? गर्गाचार्य ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में दैत्यों का नायक जंब था और देवताओं का स्वामी इंद्र था। उन्हें युद्ध करते एक दिव्य वर्ष बीत गया। उसके बाद देवता हार गए और दैत्य विजयी हो गए। विप्रचित्ति आदि देव दानवों ने जब देवताओं को परास्त कर दिया तब वे युद्ध से भागने लगे। देवता लोग अब उनमें शत्रुओं को जीतने का उत्साह नहीं रहा। फिर वे दैत्य सेना के वध की इच्छा से बृहस्पति के पास आए तथा उनके तथा बाल्य खेल आदि ऋषियों के साथ बैठकर विचार करने लगे कि इन दानवों पर दैत्यों पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा कि देवताओं, तुम अत्रि के तपस्वी पुत्र महात्मा दत्तात्रेय के पास जाओ और उन्हें भक्ति पूर्वक संतुष्ट करो। उनमें वर देने की शक्ति है, वे तुम्हें दैत्यों का नाश करने के लिए वरदान देंगे। तब तुम सब लोग मिलकर दैत्यों और दानवों का वध कर लोगे। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे सहस्र अर्जुन, बृहस्पति के ऐसा कहने पर देवगण दत्तात्रेय के आश्रम पर गए और वहां लक्ष्मी जी के साथ उन महात्मा का दर्शन किया। सबसे पहले उन्होंने अपना कार्य साधन करने के लिए उन्हें प्रणाम किया, उनका स्तवन किया, स्तवन माने स्तुति की, और भक्ष्य भोज्य आदि वस्तुएं भेंट की, माला आदि भेंट की। इस प्रकार वे आराधना में लग गए, पूजा करने में लग गए। जब दत्तात्रेय जी चलते तो देवता भी पीछे पीछे चलते, जब वे खड़े होते तो वे भी खड़े रह जाते, जब वे ऊंचे आसन पर बैठते तो देवता नीचे खड़े होकर उनकी उपासना कर दे। एक दिन पैरों में पड़े हुए देवताओं से दत्तात्रेय जी ने पूछा, अरे देवताओं, तुम लोग क्या चाहते हो? बड़ी सेवा करते हो, बड़े विनम्रता से तुम्हारा व्यवहार हो रहा है, क्या बात है? तुम्हारे अंदर क्या इच्छा है? देवता बोले कि हे मुनिराज, इन दानवों ने त्रिलोकी पर आक्रमण करके भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक आदि पर अपना आधिपत्य जमा लिया, अपना अधिकार कर लिया। सारा यज्ञ भाग वे छीन लेते हैं। हमारी रक्षा का अब कोई उपाय नहीं दिखा है तो हम आपके पास आए हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारी रक्षा हो और त्रिलोकी मुझे मिल जाए, हमको मिल जाए। हे जगन्नाथ, आप निष्पाप और निर्लेप हैं। विद्या के प्रभाव से शुद्ध हुए आपके अंतःकरण की ज्ञान की किरणें हम सबको प्रभावित करने वाली है। आप जो आदेश देंगे वो हम करने के लिए तैयार है। दत्तात्रेय जी ने कहा, देवताओं, ये सत्य है कि मेरे पास विद्या है, पर साथ में ये भी बात है कि मैं समदर्शी भी हूं। मेरे लिए तुम्हारे में और दैत्यों में कोई भेद नहीं है। परंतु याद रखो, ये लक्ष्मी है, इस नारी के कारण से मैं दूषित हूं, क्योंकि हरदम स्त्री का निरंतर सहयोग दोष का कारण बन जाता है। उनके ऐसा कहने पर देवता बोले, हे दत्तात्रेय जी महाराज, मुनि श्रेष्ठ क्या कह रहे हैं, हम समझे नहीं। ये तो साक्षात जगत की माता लक्ष्मी है, इनमें पाप का लेश भी नहीं है, ये स्वयं बिल्कुल निर्दुष्टा है। जैसे सूर्य की किरणें ब्राह्मणों और चंडाल दोनों पर पड़ती है किंतु वो अपवित्र नहीं होती, ऐसी लक्ष्मी जी तो महान पवित्र है। आप इनके संसर्ग से अपने को दूषित किस भाव से बोलते हैं समझ में नहीं आया। देवताओं के विनम्र भरे प्रश्न को सुनकर दत्तात्रेय जी ने हंस करके कहा, अच्छा तुम लोगों का ऐसा विचार है, ये तो सब बात मैंने तुम्हारे हृदय की परीक्षा के लिए कहा था कि देखो तुम हमें क्या कहते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में तो बड़ा आदर है। अब मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। समस्त असुरों को युद्ध के लिए यही मेरे सामने बुलाओ, अब देरी मत करो, और मेरी तपस्या की दृष्टि से जो अग्नि प्रज्वलित होगी, एक विलक्षण अग्नि प्रकट होगी, वो दैत्यों के बल और तेज को क्षीण कर देगी और वे सब के सब मेरी दृष्टि में पड़कर नष्ट हो जाएंगे। ये बात सुनकर देवता एक दूसरे का मुख देखने लगे, अरे आते ही तो क्या बात कही और अब कितनी बड़ी बात कहते हैं। इसका मतलब है कि महापुरुष हमारे हृदय की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। महापुरुष यदि कह भी दें कि भाई हमारे तो ऐसी है वैसी बात है, तो कहते हैं उसमें अश्रद्धा कभी नहीं करनी चाहिए। फिर देवताओं ने दत्तात्रेय की आज्ञा के अनुसार दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। देवताओं, दैत्यों, दानवों, तुम्हें जिस विजय का अभिमान हो रहा है, हम देवता लोग तुमको ललकार करके कहते हैं आओ हमसे युद्ध करो। बस वे अभिमानी दानव दैत्य एक साथ देवताओं पर टूट पड़े। दैत्यों की मार खाकर देवता भय से व्याकुल हो गए और भाग करके दत्तात्रेय जी के आश्रम पर आए कि महाराज ये क्या कर दिया, आपके कहने से तो हमने बुलाया, सुग्रीव की तरह हालत हो गई। दैत्य भी देवताओं के काल के गाल में भेजने के लिए वहां दत्तात्रेय के आश्रम पर पहुंच गए। वहां उन्होंने महाबली महात्मा दत्तात्रेय जी को देखा, उनके वाम भाग में चंद्रमुखी लक्ष्मी जी विराजमान थी जो उनकी प्रिय पत्नी और संपूर्ण जगत के कल्याण करने में तत्पर रहती है। लक्ष्मी जी सर्वांग सुंदरी, लक्ष्मी जी स्त्री समुचित संपूर्ण उत्तम गुणों से विभूषित, जो उत्तम स्त्री में होते हैं वो सब लक्षण उनमें थे, और बहुत नम्र और मीठी वाणी से भगवान दत्तात्रेय से वार्तालाप कर रही थी। उन्हें सामने देख करके दैत्यों के मन में ऐसी इच्छा हुई कि ऐसी सुंदर स्त्री तो हम दानवों के पास रहनी चाहिए, तो उन्होंने देवताओं को तो छोड़ दिया और लक्ष्मी जी को किस उपाय से लेवे इस पर विचार करने लगे। वे पाप से मोहित हो गए थे, इस कारण से वे अपनी सब सैन्य शक्ति, अस्त्र शक्ति और अपनी स्वयं की शक्ति सब भूल गए, मानो उनकी सब शक्तियां क्षीण हो गई, और वे आपस में बात करने लगे, देखो ये स्त्री त्रिभुवन का सारभूत रत्न है, यदि ये स्त्री हमें मिल जाए तो हम तो कृतार्थ हो जाएंगे, इसलिए अपने सब मिलकर के इसको पालकी पर बैठाएं और अपने स्थान पर ले चले। ऐसी दुर्भावना रखते हुए दैत्य लोग लक्ष्मी जी में आसक्ति रखते हुए वहां गए और लक्ष्मी जी को पालकी में बैठाकर उसे मस्तक पर ले अपने स्थान की ओर चल दिए। देवता लोग देखते रह गए, ये क्या हो रहा है, दत्तात्रेय जी जगत जननी लक्ष्मी जी की रक्षा नहीं कर पाए, हमको तो क्या बोले थे, यदि हमको ये पता होता कि इसे लक्ष्मी जी का हरण कर लेंगे तो हम दत्तात्रेय जी के कहने पर क्यों ये परिस्थिति पैदा करते हैं? देवताओं को इस प्रकार से विचलित देखकर दत्तात्रेय जी ने हंस करके कहा, अरे देवताओं, अब तुम सब चिंता छोड़ दो, तुम्हारा तो अब सौभाग्य जागृत हो गया। क्यों? कि दैत्यों के सिर पर अब लक्ष्मी जी चढ़ गई। अब तुम लोग जो है आगे बढ़ो, हथियार उठाओ और अब दैत्यों का वध करो। डरने की आवश्यकता नहीं है, अब इनके अंदर वो तेज खत्म हो गया। लक्ष्मी के रूप पर और स्वयं लक्ष्मी पर जब इन्होंने अपने आप को न्योछावर कर दिया तो इनके अंदर अब तेज नहीं रहा, ज्ञान का बल नहीं रहा, शस्त्र का बल काम नहीं आएगा, क्योंकि पराई स्त्री के स्पर्श से सब प्रकार का पुण्य जल भुन करके समाप्त हो जाता है, सब शक्तिहीन हो गए। देरी मत करो देवताओं, जाओ और अस्त्र शस्त्र से दैत्यों को मारना चालू करो। अब क्या था, इधर देवताओं ने दत्तात्रेय जी की आज्ञा पाकर दैत्यों को मारना प्रारंभ किया। लक्ष्मी उनके सिर पर चढ़ी हुई थी इसलिए वे नष्ट होते गए, नष्ट होते गए, और वे सब नष्ट हो गए और लक्ष्मी जी महामुनि दत्तात्रेय जी के पास आकर खड़ी हो गई। उस समय संपूर्ण देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं, दैत्यों के नाश से बड़ी प्रसन्नता हुई और देवता लोग दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके वहां से चले गए। जाते जाते सब देवता आपस में बात करने लगे कि देखो भगवान दत्तात्रेय जी का बुद्धि कौशल देखो, बिना शस्त्र के, बिना अपने चित्तवृत्ति में क्रोध को लिए, बिना किसी और उपाय के कैसे दैत्यों का संहार करवाया है। तो सुनो सहस्रार्जुन, यदि तुम इस प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुरंत दत्तात्रेय जी की शरण में चले जाओ। गर्गाचार्य जी की बात सुनकर के कृतवीर का पुत्र सहस्रार्जुन दत्तात्रेय जी के आश्रम पर गया, बड़ी भक्ति से उनका पूजन किया और वह उनका पैर दबाता हुआ उनके लिए माला, चंदन, गंध, जल, फल आदि सामग्री लाकर उनके सामने रखी, भोजन के साधन जुटाता और जो जूठन होती उसको भी साफ करते। तो इससे प्रसन्न होकर के दत्तात्रेय जी ने सहस्रार्जुन से कहा, अरे भैया, तुम देखते हो मेरे पास स्त्री बैठी है, मैं कोई बहुत ऋषि हूं क्या? मैं इसके पास रहने से निंदा का पात्र हो गया। देखो मेरी सब जगह निंदा होती है, मेरी सेवा तुम्हें नहीं करनी चाहिए, मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं, मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं है जो मैं तुमको वरदान दे दूं, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर दूं। तुम अपने काम के लिए किसी शक्तिशाली पुरुष की आराधना करो। दत्तात्रेय जी की ये बात सुनकर के गर्गाचार्य जी के द्वारा कही हुई देवताओं की और दैत्यों के युद्ध की सारी बात याद आ गई और मुस्कुराते हुए उसने दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं तो यूं ही माया के जाल में फंसा हुआ हूं, फिर आप मुझे क्यों माया के जाल में फंसा रहे हैं? आप लक्ष्मी से दूषित हो सकते हैं, आप निंदा के पात्र हो सकते हैं, आप तो सर्वथा निष्पाप हैं और ये देवी संपूर्ण जगत की मां है, इसलिए हम आपको वंदित दृष्टि से देखते हैं अथवा वंदनीय दृष्टि से देखते हैं। अर्जुन के यूं कहने पर भगवान ने संपूर्ण भूमंडल को वश में करने वाले महाभाग सहस्रार्जुन से कहा, राजन तुमने मेरे गूढ़ रहस्य का कथन कर दिया। सहस्रार्जुन के वो कहने पर भगवान दत्तात्रेय ने संपूर्ण भूमंडल को वश में करने वाले महाभाग सहस्रार्जुन से कहा, राजन तुमने मेरे गूढ़ रहस्य का कथन किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हुआ हूं। बोलो क्या चाहते हो, कोई वरदान मांग लो। सहस्रार्जुन ने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ऐसी उत्तम ऐश्वर्य शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं प्रजा का पालन करूं, सहस्रार्जुन ने कहा, देव यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसी उत्तम ऐश्वर्य शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं प्रजा का पालन करूं और अधर्म का भागी न बनूं। एक बात और कहना चाहता हूं, मैं दूसरों के मन की बात जान लूं और युद्ध में कोई मेरा सामना नहीं कर सके, ठीक, और युद्ध करते समय मुझे 1000 भुजाएं प्राप्त हों, किंतु वे इतनी हल्की होनी चाहिए जिससे मेरे शरीर पर भार न पड़े, ठीक है, और पर्वत आकाश जल पृथ्वी और पाताल में मेरी अबाध गति रहे, और मेरा वध मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से हो, और यदि कभी मैं कुमार्ग में चला भी जाऊं तो मुझे कोई सन्मार्ग दिखाने वाला उपदेशक प्राप्त हो। दत्तात्रेय जी ने कहा, रे तुमने बहुत सुंदर ये चीज मांगी है, मनुष्यों को तो इस बात पर खूब ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छा वरदान मांगा, और मांगो। कहा, मुझे श्रेष्ठ अतिथि प्राप्त हो और निरंतर दान करते रहने पर भी मेरा धन कभी क्षीण न हो, मेरा स्मरण करने से संपूर्ण राष्ट्र में धन का अभाव दूर हो जाए तथा आप में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। दत्तात्रेय जी बोले, सहस्रार्जुन तुमने जो वरदान मांगे हैं मैं बहुत खुश हुआ हूं, सब तुमको प्राप्त हो जाएंगे और मेरी कृपा से तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। अब वो सुमति अपने पिता से कहते हैं कि दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके सहस्रार्जुन अपने घर गया। समस्त प्रजा और अमात्य वर्ग, अमात्य माने मंत्री, अमात्य वर्ग के लोगों को एकत्रित करके उसने राज्याभिषेक ग्रहण किया। उसके अभिषेक के लिए गंधर्व, अप्सराएं, वशिष्ठ आदि महर्षि, मेरु आदि पर्वत, गंगा आदि नदियां, समुद्र, पाकर आदि वृक्ष, इंद्र आदि देवता, वासुकी आदि नाग, गरुड़ आदि पक्षी तथा नगर एवं जनपद के निवासी सब आ गए। दत्तात्रेय जी की कृपा से अभिषेक की सब सामग्री अपने आप ही जुट गई। फिर तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने होम के लिए अग्नि को प्रज्वलित किया तथा साक्षात नारायण स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी एवं अन्य अन्य महर्षियों ने समुद्र और नदियों के जल से सहस्रार्जुन का राज्याभिषेक किया। राज सिंहासन पर आसीन होते ही हाय हाय नरेश ने अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए घोषणा करवा दी। दत्तात्रेय जी से उत्तम ऐश्वर्य शक्ति पाकर वे बड़े शक्तिशाली हो गए। राजा की घोषणा थी, आज से मुझे छोड़कर जो कोई भी शस्त्र ग्रहण करेगा अथवा दूसरों की हिंसा में प्रवृत्त होगा वो लुटेरा समझा जाएगा और मेरे हाथ से उसका वध हो जाएगा। ऐसी आज्ञा जारी होने पर उस राज्य में महापराक्रमी नरश्रेष्ठ राजा सहस्रार्जुन को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य शस्त्र धारण नहीं करता था। स्वयं राजा ही गांवों, पशुओं, खेतों और द्विजातियों की रक्षा करते थे। तपस्वियों तथा व्यापारियों के समुदाय की रक्षा भी राजा ही करते थे। सहस्रार्जुन राजा लुटेरे, सर्प, अग्नि, तथा शस्त्र आदि से भयभीत पुरुष की रक्षा और आपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों की रक्षा वे स्वयं करते थे। उनके राज्य में धन का कभी अभाव नहीं हुआ। उन्होंने एक से एक बढ़कर के यज्ञ किए, जिनके पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को खूब दक्षिणाएं मिलती थी। उन्होंने कठोर तपस्या भी की, संग्रामों में भी महान पराक्रम दिखाया। उनकी समृद्धि और बड़ा हुआ सम्मान देखकर, राजा का सम्मान देखकर अंगिरा मुनि ने कहा, अन्य राजा लोग ये यज्ञ, दान, तपस्या तथा संसार में पराक्रम दिखाने में राजा सहस्रार्जुन की तुलना नहीं कर सकते। राजा सहस्रार्जुन ने जिस दिन दत्तात्रेय से समृद्धि की प्राप्ति की थी, उसी दिन के आ जाने के बाद उनके लिए यज्ञ करता था। सारी प्रजा भी राजा को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई देख उसी दिन से एकाग्र चित्त से दत्तात्रेय जी की पूजा करती थी। इस प्रकार चराचर भगवान विष्णु के स्वरूप भूत महात्मा दत्तात्रेय जी की महिमा का वर्णन किया गया है। शंख, चक्र, गदा और धनुष धारण करने वाले अनंत एवं अप्रमेय भगवान विष्णु के अनेक अवतार पुराणों में वर्णित हैं। जो मनुष्य उनके परम स्वरूप का चिंतन करता है वह सुखी रहता है और संसार से उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। वे आदि अंतरहित भगवान विष्णु अधर्म का नाश और धर्म के प्रचार के लिए ही संसार की रक्षा और पालन करते हैं। अब मैं ऐसे पितृभक्त राजर्षि महात्मा अलर्क के जन्म का वृत्तांत सुनाता हूं, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने उन्हीं को योग का उपदेश दिया था। अलर्क के विषय सुमति कहते हैं कि पिताजी, प्राचीन काल की बात है, शत्रुजीत नाम के एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनके यज्ञों में पर्याप्त सोमरस पान करने के कारण से इंद्र बहुत संतुष्ट रहते थे। देखो, सोमरस के विषय में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। आजकल लोग कहते हैं कि देवता लोग भी मदिरा पीते थे, ये सोमरस मदिरा ही है, ऐसी बात नहीं। सोम लता होती थी, सोम लता का जो रस होता था वो रस से एक सात्विक मादकता आती थी। सात्विक मादक माने एक तो उसमें बड़ी सुरम्य सुगंध, दूसरा एकदम अंदर में किसी प्रकार का असंतोष, जलन, ईर्ष्या ये नहीं पैदा होते थे, एकदम आनंद रहता रहता है। उससे आदिवादी बीमारियां नहीं होती थी। सोमरस का वो पान होता था देवताओं के लिए। वो नशा सात्विक नशा है, ये तो महान निकृष्टतम नशा है। तो सोमरस का पान करने के लिए देवता लोग आते थे। शत्रुजीत का पुत्र भी बुद्धि, पराक्रम और लावण्य में क्रमशः बृहस्पति, इंद्र और अश्विनी कुमारों के समान था। वह राजकुमार प्रतिदिन अपने समान अवस्था, बुद्धि, बल, पराक्रम और चेष्टा वाले राजकुमारों से घिरा रहता था। कभी तो उनमें शस्त्रों, शास्त्रों का विवेचन होता, फिर उनके सिद्धांतों का निर्णय होता, कभी काव्य चर्चा होती, कभी आपस में संगीत गोष्ठी करते, कभी नाटक आदि में समय व्यतीत होता। राजकुमार जब खेलने में लगते उस समय उन्हीं की अवस्था वाले बहुत से ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यों के बालक प्रेम से उनके साथ खेलते थे। कुछ समय बीतने के पश्चात अश्वतर नामक नाग के दो पुत्र नागलोक से पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले। सांप था एक अश्वतर नाम का, उसके दो बेटा। वे देखने में बड़े सुंदर, वे ब्राह्मणों के रूप में अपने को छिपाए रखे थे। देखने में बड़े सुंदर और तरुण थे। वहां जो राजकुमार तथा अन्यान्य द्विज बालक खेलते थे उनके साथ वे भी भांति भांति के विनोद करते थे, प्रेम से रहते थे। वे राजकुमार, वे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के पुत्र तथा वे दोनों नागराज के बालक साथ साथ स्नान करना, वस्त्र धारण करना, चंदन का लेप करना, भोजन करना साथ साथ करते थे। राजकुमार के प्रेमवश नागराज के ये दोनों पुत्र प्रतिदिन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आते थे। उनके साथ भांति भांति के विनोद, हास्य, वार्तालाप आदि करने से राजकुमार को बड़ा सुख मिलता था। वे उन्हें साथ लिए बिना भोजन, स्नान, क्रीड़ा, शास्त्र चर्चा कुछ नहीं करते थे। इस प्रकार वे दोनों नागकुमार भी अपने बिना रसातल में लंबी लंबी सांस खींचते वे रात बिताते और दिन निकलते इनके पास पहुंच जाते। इस तरह बहुत समय बीतने के बाद एक दिन नागराज अश्वतर ने अपने दोनों बालकों से पूछा, पुत्रों तुम दोनों रोज यहां से रसातल से निकलकर मृत्युलोक में जाते हो, वहां तुमने किससे अधिक प्रेम किया है? तुम यहां आते ही छटपटाने से लगते हो और वापस मृत्युलोक में जाना चाहते हो। तुम पाताल में दिखाई नहीं देते, केवल रात में ही रहते हो, दिन में नहीं दिखाई देते, क्या कारण है बताओ। उन पुत्रों ने कहा, पिताजी मृत्युलोक में शत्रुजीत के एक पुत्र है जिसका नाम ऋतध्वज है। बड़े रूपवान, सरल, शूरवीर, मानी तथा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वो इतने शिष्ट, इतने प्रेमी हैं कि बिना पूछे ही वार्तालाप आरंभ कर दिए। अच्छे आदमी का लक्षण है कि वो बिना किसी के बतलाए खुद अपनी तरफ से बोले, क्यों साहब सब ठीक है, सब आनंद है। बिना पूछे ही वार्तालाप आरंभ करते हैं। वक्ता है, विद्वान है, स्नेह दृष्टि से देखने वाले हैं, समस्त गुणों के भंडार है। वे राजकुमार माननीय पुरुषों का सदा आदर देते हैं, बुद्धिमान एवं लज्जाशील है, विनय इनका आभूषण है। उनके अर्पण किए बिना उत्तम उत्तम उपचार, प्रेम और भांति भांति के भोगों ने हमारा मन हर लिया है। उनके बिना नागलोक या भूलोक में कहीं भी हमें सुख नहीं मिलता। पिताजी उनके वियोग से पाताल लोक की यह शीतल रजनी भी हमारे लिए संताप का कारण बनती है और उनका साथ रहने से दिन का सूर्य भी हमारे लिए महान आनंद का कारण है। मैं यह आगे करें क्या आपके रसातल में? न तो इतना प्रेम है आप लोगों में, न ऐसी ठंडकता है, न ऐसा बर्ताव, कितना सुंदर बर्ताव करता है। तो उन नाग लोक के दोनों प्राणियों के पिता ने कहा कि पुत्रों अपने पुण्यात्मा पिता का वह बालक धन्य है कि जिसके गुणों का वर्णन तुम जैसे गुणवान लोग परोक्ष में कर रहे हो। किसी आदमी की प्रशंसा पीठ पीछे होती है, वो प्रशंसा वास्तविक होती है, और जो सन्मुख होती है वो स्वार्थ की होती है। तुम लोग बड़े श्रेष्ठ हो। तुम वहां उसकी प्रशंसा, ऋतध्वज की प्रशंसा पीठ पीछे कर रहे हो। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्र को तो जानते हैं, किंतु उनके स्वभाव के अंदर शील सदाचार ये नहीं दिखता। कुछ लोग शीलवान हैं परंतु शास्त्र ज्ञान है ही नहीं। जिस पुरुष में शास्त्रों का ज्ञान है और जिसका उत्तम शील स्वभाव है, ये दोनों गुण जिसके अंदर समान रूप से होते हैं, मैं उनको खूब धन्यवाद देता हूं। जिसके मित्रोचित गुणों का मित्र लोग और पराक्रम का शत्रु लोग भी वर्णन करते हो, उस पुत्र से पिता वास्तव में गुणवान होता है। ऋतध्वज तुम लोगों के उपकारी मित्र हैं, तुम लोगों ने भी उनके चित्त को प्रसन्न करने के लिए कभी उनका भी कोई मनोरथ सिद्ध किया है ना? जिसके यहां से याचक कभी विमुख नहीं जाते और जिसके यहां मित्र का कार्य कभी सिद्ध हुए बिना नहीं रहता, वही पुरुष धन्य है, उसी का जीवन और जन्म धन्य है। मेरे घर में जो सोना आदि रत्न वाहन आसन और कोई वस्तु उनके लिए रुचिकर हो, वह सब तुम लोग निशंक होकर के दे सकते हो। जो सुहृदों का उपकार करते हैं, शत्रुओं को हानि पहुंचाते हैं तथा मेघ के समान सर्वदा दान की वर्षा करते हैं, विद्वान लोग सदा उनकी उन्नति चाहते हैं। पुत्र बोले, पिताजी वे तो कृतकृत्य है, उनका हम क्या उपकार कर सकते हैं? उनके घर पर आए वे कभी भी याचक खाली नहीं जाते, सब कामनाएं पूर्ण करते हैं। उनके घर में जो रत्न है वे आपके पाताल में है ही नहीं, उन जैसे वाहन आसन आभूषण वस्त्र कहां है? कहीं नहीं है। उनमें जो विज्ञान है वो किसी में नहीं है। पिताजी, बड़े बड़े विद्वान भी इस प्रकार के संदेहों का भलीभांति निवारण नहीं कर सकते जो वे ऋतध्वज करते हैं। हाँ, एक कार्य उनका अवश्य है, किंतु वह तो ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सर्व समर्थ परमेश्वर के सिवा हम लोगों में से तो कोई नहीं कर सकता। पिता ने कहा, बेटा साध्य हो या असाध्य, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यह अलग बात है, परंतु ऐसा कौन सा काम है कि जो उसके लिए बहुत जरूरी है, वो सुनना चाहता हूं। जो अपने मन बुद्धि और इंद्रियों को संयम में रख करके उद्यत होकर काम में लग जाते हैं, उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। वे अज्ञात अगम्य और अप्राप्य भी हो, ऐसी स्थिति बनती नहीं है, उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं होती। चींटी धीरे धीरे चलती है, तथापि वह चलती रहने से हजारों कोस तक जा सकती है, और इसके विपरीत गरुड़ है, बहुत तेज गति से चलता है, पर वो चले ही नहीं तब क्या करे, एक पग भी नहीं जा सकता। ऐसे ही उद्यम के विषय में है, लोग देखते हैं कि हमारे पास से हम ऐसा कर लेंगे और करने में लगते नहीं, वे पीछे रह जाते हैं। कहां ये भूमंडल, कहां ध्रुव का स्थान, प्राद उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव देखो कितने ऊंचे स्थान पर चला गया। इसलिए महाभाग राजकुमार को जिस वस्तु की आवश्यकता हो वो बतलाओ, जिसे देकर तुम लोग एक मित्र के ऋण से उऋण हो सकते हो। पुत्रों ने कहा कि पिताजी, महात्मा ऋतध्वज ने अपनी कुमार अवस्था की एक घटना बताई थी। वो घटना यह है कि राजा शत्रुजीत के पास पहले एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे, उनका नाम था गालव, महर्षि गालव। ये गलता तीर्थ है ना, ये गालव ऋषि का ही है। ऐसे वो आए थे ऋतध्वज के पिता शत्रुजीत के पास, गालव ऋषि आए, बड़े बुद्धिमान थे। वे एक घोड़ा लेकर आए थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज एक पापाचारी नीच दैत्य आकर मेरे आश्रम का विध्वंस कर देता है, वह सिंह हाथी तथा अन्य वन जंतुओं का और छोटे छोटे शरीर वाले दूसरे जीवों का भी शरीर धारण करके अकारण आता है और समाधि और मौन व्रत के पालन में लगे हुए मेरे सामने आकर बड़ा उपद्रव करता है, उससे मेरा चित्त दुखी हो जाता है। यद्यपि हम लोग उसको अपने क्रोध से शांत करने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन बड़े ही कष्ट से उपार्जित की हुई तपस्या का अपव्यय करना ठीक भी तो नहीं है महाराज। शत्रुजीत राजा ने पूछा, मुनिवर आपके कष्ट क्या है, क्या कष्ट दिया? तो सुनो, एक दिन की बात है, मैं उस असुर को देखकर अत्यंत खिन्न और लंबी लंबी सांस ले बैठ गया। इतने में ही यह घोड़ा आकाश से नीचे उतरा। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने यह अश्व बिना थके समस्त भूमंडल की परिक्रमा कर सकता है, इसे सूर्य देव ने अपने लिए प्रदान किया है। आकाश पाताल और जल में भी इसकी गति नहीं रुक सकती है, ये समस्त दिशाओं में बेरोक टोक चलता है। पर्वतों पर चढ़ने में भी इसे कोई कठिनाई नहीं होती है। समस्त भूमंडल में ये बिना थकावट के कारण ऐसे ही रहेगा, इसलिए संसार में इसका कुवलय, कु माने पृथ्वी, वलय माने मंडल, ये नाम हो जाएगा। जो नीच दानव तुम्हें रात दिन क्लेश में डाले रहता है, उसका भी इसी अश्व पर आरूढ़ होकर राजा शत्रुजीत के पुत्र ऋतध्वज वध करेंगे। इस अश्वरत्न को पाकर इसी के नाम पर राजकुमार की प्रसिद्धि हो जाएगी, तुम्हें कुवलयाश्व कहलाएंगे, कुवलयाश्व। उस आकाशवाणी के अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूं, तपस्या में विघ्न डालने वाले उस दानव को तुम रोको, क्योंकि राजा भी प्रजा की तपस्या के अंश का भागी होता है। इसलिए हे भूपाल, अब मैंने यह अश्वरत्न तुमको अर्पित कर दिया है, तुम अपने पुत्रों को मेरे बारे में मेरे साथ चलने की आज्ञा दो, जिससे अधर्म का लोप न हो जाए। गालव मुनि के यूं कहने पर धर्मात्मा राजा ने मंगलाचार पूर्वक राजकुमार ऋतध्वज को उस अश्वरत्न पर चढ़ाया और मुनि के साथ भेज दिया। गालव मुनि उन्हें साथ लेकर अपने आश्रम को लौट आए।